दीवा आज समय से घर आ गई थी। उसने आकर आर्यांश से बात की और फिर डिनर किया। उसके बाद दीवा सोने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। आर्यांश के वहां ना होने पर वो काफी सुकून महसूस करती थी। दीवा बाहर बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। वो बाहर चल रही ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। कुल मिलाकर दीवा का मूड काफी अच्छा था। इस बीच दीवा के पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने कॉल पर मौजूद आदमी की आवाज़ सुनी, उसका मूड एक पल में बिगड़ गया था। अब दीवा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। ये कॉल रक्षित की तरफ से आया था। रक्षित ने दूसरी तरफ धीमी भारी आवाज़ में कहा, कल सैटरडे है दीवा, हमें अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलने की इजाज़त होती है, तो क्या कल तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी? दीवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर रक्षित उसे कॉल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वहीं दीवा को चुप देखकर रक्षित ने कहा, प्लीज़ दीवा आ जाना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। रक्षित की आवाज़ में दर्द दीवा महसूस कर सकती थी। दीवा ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया था। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। एक वक्त था जब वो उसे बेहद प्यार करती थी। न जाने क्यों रक्षित को दर्द में देखकर दीवा को भी फ़र्क पड़ रहा था। दीवा ने खुद को मजबूत किया और सख्त आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है यहीं कॉल पर कह दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहां आ सकूं। पहले जब भी रक्षित दीवा को मिलने के लिए कहता था तो वो अपना सारा काम छोड़कर चली जाती थी, लेकिन अब हालात इस कदर हो गए थे कि दीवा बहाना बना रही थी। अचानक रक्षित की आंखों में आंसू आ गए। उसने भारी आवाज में कहा, प्लीज अब ऐसे तो रिएक्ट मत करो जैसे हम एक दूसरे के लिए अजनबी हों और एक दूसरे को जानते ही ना हों। आई विश कि हम हमेशा अजनबी ही होते, दीवा ने बेरुखी से कहा। आखिरी बार बुला रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्या हमारे रिश्ते के खातिर तुम मुझे एक आखिरी बार मिलने नहीं आ सकती दीवा? इसमें कुछ गलत नहीं है, रक्षित ने रुंधे गले से कहा। ठीक है, एक आखिरी बार और सही, दीवा ने जवाब दिया। कहीं ना कहीं वो भी एक आखिरी बार रक्षित से मिलना चाहती थी, उसकी हालत देखना चाहती थी। थैंक यू सो मच मेरी जान, रक्षित ने इतने मायूस स्वर में कहा। अगली ही पल कॉल कट हो गया था। रक्षित को इस तरह टूटा हुआ देखकर दीवा भी अंदर ही अंदर बिखर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं को रोकने की वजह से लाल होने लगी थीं। काश तुमने मुझे धोखा ना दिया होता, या काश मैं कभी आर्यांश कपूर से नहीं मिली होती, ना मेरी फैमिली के साथ धोखा होता और ना ही मेरी जिंदगी इस तरह बिखरती। किस्मत इतना अजीब खेल क्यों खेल रही है? मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया रक्षित। अगर आज मैं यहाँ आर्यांश की जबरदस्ती को झेल रही हूँ तो उसका कारण भी तुम ही हो। तुमने मेरी ड्रिंक को स्पाइक किया था, उस आदमी से तुम्हें बच गई थी, लेकिन आर्यांश से मुझे कौन बचाएगा? दीवा ने खुद से कहा। इसी के साथ उसकी आंखों में कैद आंसू भी बाहर निकले थे। दीवा वापस अंदर कमरे में आ गई थी। उसका दिल भारी हो रहा था। वक्त कितना बदल गया था। उसने रक्षित के साथ शादी करने के सपने देखे थे, एक खुशहाल जिंदगी का, पर सब बदल गया और उसका कारण कोई और नहीं, रक्षित ही था। ऐसा नहीं था कि वे हमेशा से करीब थे। दीवा स्टडी के लिए लंदन गई थी, तब वो कभी कभार उससे मिलने आता था और वो वक्त दीवा के लिए सबसे खुशनुमा वक्त होता था। वे साथ में काफ़ी दिनों तक वेकेशन के लिए जाते थे। जहां लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करती थी, वहीं उनका रिश्ता बिना किसी झंझट के लंबे समय तक चला था। दीवा आकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। रात को न जाने कब तक वो यूं ही रोती रही। जब उसकी आंखें थक चुकी थीं तब वो नींद के आगोश में थी। अगली सुबह दीवा नाश्ते के बाद डिटेंशन सेंटर पहुंची। वो वहां पहले भी गई थी, लेकिन पिछली बार वो अपने पापा से मिलने के लिए आई थी, तो इस बार रक्षित से मिलने। पिछली बार जब यहां आई थी तब यही दुआ की थी कि मेरे पापा यहां से बाहर निकल जाएं, लेकिन अब मैं यही चाहती हूं कि तुम कभी यहां से बाहर ना निकलो, रक्षित दीवान, दीवा ने मन ही मन कहा। वेटिंग रूम में दीवा जब उसका इंतजार कर रही थी तब रक्षित को लाया गया। उसने कैदियों वाले कपड़े पहन रखे थे और उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई थी। उसकी आंखों में पछतावा नजर आ रहा था। रक्षित को इस हाल में देखकर किसी का भी दिल टूट सकता था, लेकिन दीवा ने खुद को मजबूत किया। अचानक रक्षित उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे। रक्षित की आंखों में आंसू थे। प्लीज मुझे माफ कर दो दीवा, रक्षित ने अफसोस भरे स्वर में कहा। वो सच में दीवा को खोकर काफी पछता रहा था। यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही है रक्षित, जो तुम घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ोगे और माफ़ी मांगोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, दीवा ने कड़वाहट के साथ कहा। रक्षित खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे माफ करना आसान नहीं है और ना ही तुम कभी कर पाओगी, लेकिन जो मुझे कहना है वो तुम्हें कहकर रहूंगा। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, दीवा ने सख्ती से जवाब दिया। क्या जानना नहीं चाहोगी कि मैं किस चीज का बदला ले रहा था?
आज से 15 साल पहले मेरे पापा की कंपनी को घाटा लगा था तो तुम्हारे पापा ने उसे खरीद लिया था। वो उसे गम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मेरे मॉम डैड ने सुइसाइड कर ली। मैं अकेला हो गया था दीवा, मेरा कोई नहीं था। तुम ही थी जो मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई थी, रक्षित ने धीमी कांपती आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर दीवा को झटका सा लगा, उसे हमेशा से चीट किया जा रहा था। दीवा ने हल्के से सिर हिलाकर पूछा, तो तुम मुझसे इसलिए मिले क्योंकि तुम्हें बदला लेना था? मेरे पापा ने कंपनी खरीदी या तुम्हारी फैमिली के साथ जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी रक्षित, जो मेरे साथ तुमने ये किया? रक्षित की नजरें झुक गईं। वहीं दीवा अभी तक इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मार्केट में अप एंड डाउन चलते रहते हैं और जो बिजनेस करता है उसे उनके लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर कोई इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो बिजनेस करने के बजाय जॉब करना सिलेक्ट करता है। समझ नहीं आ रहा उनके किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है, दीवा ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा। दीवा की आंखों में आंसू देखकर रक्षित परेशान हो गया। उसने जल्दी से उसे समझाने के लिए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दीवा, मैंने ये सब कुछ गलत समझा था। तुम प्लीज इस तरह रोना बंद करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रक्षित अभी भी यही चाहता था कि दीवा उसके प्यार पर यकीन कर ले। उसे तकलीफ में देखकर रक्षित को भी बुरा लग रहा था। बस करो, प्यार जैसा कुछ नहीं था हमारे बीच में। तुम बदला लेने के लिए मेरे पास आए थे और तुम्हारा बदला पूरा हो गया। तुमने मेरे डैड को भी धोखा दिया और उन्हें जेल भेज दिया था। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है तो अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ रक्षित दीवान, आज से हम दोनों अजनबी हैं, दीवा ने अपने आंसू साफ करके गुस्से में जवाब दिया। मेरी गलती माफी लायक नहीं है और तुम माफ कर भी नहीं सकती। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब हम जेल से बाहर आए तो हम अच्छे दोस्त बनकर रहें। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, रक्षित ने कहा। दीवा के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी वो यही चाहता था कि दीवा उसकी गलतियों को भुलाकर उसे दोस्त बना ले। दीवा बोली, मेरी खुशियों की चिंता तुम मत करो क्योंकि अब मैं अपनी खुशियां किसी ऐसे इंसान पर जाया नहीं करूंगी जो मुझसे बदला लेने के लिए या अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए मेरे करीब आएगा। दीवा ने बातों ही बातों में उसे ताना सुना दिया।
यही सही रहेगा कि अब तुम खुद को प्रायोरिटी दो। मैंने जो भी किया उसे भूलने की कोशिश करना और याद रखना कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है। उम्मीद है इस बार तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, रक्षित ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। दीवा इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहती थी। अगर वो थोड़ी देर और रक्षित से नॉर्मली बात करती तो शायद उसका दिल पिघल जाता। दीवा ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हें कितने साल की सजा होने वाली है? वकील ने कहा है कम से कम 10 साल की, रक्षित ने मायूसी से जवाब दिया। वो 10 साल रक्षित को जेल के अंदर बिताने थे। वो अपने करियर में काफी अच्छा जा रहा था लेकिन उसकी बदला लेने की चाहत ने उसे बर्बाद कर दिया था। 10 साल बाद अगर वो फिर से नए सिरे से शुरुआत भी करता तो वो अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल तो खो चुका होता। दीवा ने जब सुना तो न जाने क्यों वो खुद के जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके प्यार का ये हश्र होगा उसने कभी नहीं सोचा था। क्या दीवा का दिल पिघल जाएगा और वो रक्षित की मदद करेगी? या फिर सोचिए कि अगर आर्यांश को इस बारे में पता चला कि वो दीवा रक्षित से मिलने के लिए गई है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अगले चैप्टर पर मिलते हैं।